मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 21 जून 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कल बहुत सारे मेल आप लोगों के पढ़ने को मिले और उसमें आप लोगों ने अभी जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं और सच पूछे तो बहुत विस्तार के साथ बात कर रहे हैं, उसके प्रति अपनी सराहना व्यक्त की है और न केवल सराहना ही व्यक्त की है बल्कि उत्सुकता भी व्यक्त की है। और मित्रों, मुझे आप सबके मेल पढ़कर सच पूछे तो एक ऐसी बात पर विश्वास हुआ जिस पर मैं अभी तक डाउट करता था। मैं इस बात को लेकर के थोड़ा सा हमेशा संदेह में रहता था, द्वंद्व में रहता था फ्रेंड्स, कि मैं अनुशासन के बारे में बात कर रहा हूं, यह तो बड़ा नीरस सा विषय है, लोगों को चुटकुलों की जरूरत होती है, शेर व शायरी की जरूरत होती है, विचार प्रधान चीजें अगर मैं कहूंगा तो लोग उबने लगेंगे। लेकिन मेरा यकीन तो विचार प्रधान चीजों पर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारा दिमाग किसी बात को, किसी विचार को आलोचनात्मक पूर्वक या यूं कह लीजिए कि व्याख्यात्मक पूर्वक एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में नहीं समझ लेता, तब तक शायद वह हमारे व्यवहार में नहीं ढल पाता। और यही कारण है कि हम भारतीय बहुत सी चीजों को जानते हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, चाहे आप रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, वेद उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए और दूसरे नैतिक शास्त्र की किताबें उठा लीजिए, ज्ञान से भरी हुई है। और भारतीय, चाहे वो गांव का ही आदमी क्यों ना हो, अनपढ़ तो हो सकता है, मतलब उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। इन किताबों में जो ज्ञान भरा हुआ है, जो हमारा परंपरागत नॉलेज है, उनकी जानकारी उसे है, लेकिन क्या कारण है कि वो बातें हमारे आचरण में नहीं आ पाती हैं? सच पूछिए तो बहुत विचार करने के बाद मैंने अपने लेवल पर जो निष्कर्ष निकाला मैं दोस्तों, वो ये कि हम उन्हें जानते तो हैं लेकिन केवल इन्फॉर्मेशन के लेवल पर जानते हैं, नॉलेज के लेवल पर नहीं जानते। हम जिस रूप में जानते हैं उसका रूप क्या है, उसका प्रदूषित रूप क्या है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म आप कह लीजिए क्या है, क्यों हम उसे सही रूप में नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे हमने उसके सही रूप को अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लिया है और पता लगा कि वो बिल्कुल ही गलत रूप में ढल गया है। तो इसका कारण मुझे जो नजर आया वो ये है कि उसके प्रति हमने एक आलोचनात्मक दृष्टि पैदा नहीं की। और जब हम आलोचनात्मक दृष्टि पैदा कर लेते हैं तो हम उसकी धुनाई करते हैं। जैसे मित्रों, रुई देखिए, रुई को हम सीधे रजाई में नहीं भर देते, रुई को हम सीधे तकिए में नहीं भर देते। आप अब जब ठंड के दिन शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि जगह जगह पर आपको धुन कर बैठे हुए मिलेंगे जो रुई की धुनाई करके उसे रजाई में भरते हैं। तो रुई की धुनाई करनी पड़ती है। तो जो विचार हैं, जो तथ्य हैं, जो नैतिकता के प्रतिमान हैं, हमारी परंपराएं हैं, जो बात हमसे करने के लिए कही जाती हैं, कहीं ना कहीं उन पर हम थोड़ा विचार तो करें, उनकी थोड़ी धुनाई तो करें और धुनाई करने के बाद फिर अपने दिमाग की रजाई में उसे भर दे, दिमाग के तकिए में उसे डाल दे, तब फिर वह काम करेगी। मित्रों, इसलिए मैं डिसिप्लिन पर आपसे विस्तार से बातें कर रहा हूं और इससे भी ज्यादा बल्कि मैं इसका श्रेय आपको देना चाहूंगा कि आप सब मुझे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। अदरवाइज तो 5 मिनट में भी बात कह के खत्म की जा सकती है लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, बात हो तो जाएगी लेकिन बात बनेगी नहीं। तो आइए दोस्तों, अब मैं डिसिप्लिन के इस थर्ड पार्ट में एक इश्यू पर बात कर रहा हूं जो सच पूछे तो मेरे आज के इस विषय का कोर इश्यू है, और वह है कि बेसिकली जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, वह नियंत्रण नहीं है, यह किसी की गुलामी नहीं है, न किसी के आदेश का पालन करना है। मित्रों, यह जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, मूलतः एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, एक प्रोसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हमारे दिमाग में यह बात बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगी, बल्कि ज्यादा अच्छा होगा कि मैं आत्मसात शब्द का इस्तेमाल करूं, जिस दिन यह तथ्य हम में आत्मसात हो जाएगा, डिसिप्लिन हमारी जिंदगी का बिल्कुल उसी तरह से स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा जिस तरह से सांस लेना हमारी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा है, पलकों का गिरना उठना हमारी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा है, सोना स्वाभाविक हिस्सा है, चलना और बैठना स्वाभाविक हिस्सा है, नैसर्गिक हिस्सा, नेचुरल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ रूटीन। मित्रों, अब मैं इसे थोड़ा सा सिद्ध करना चाहूंगा। मैंने कहा कि जो डिसिप्लिन है वो एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है। इसका मतलब यह हुआ कि आप पूरे के पूरे प्रकृति में देखिए, प्रकृति की बात छोड़िए, आप समाज में देखिए, समाज की बात छोड़िए, आप अपनी जिंदगी के रोजमर्रा की चीजों में देखिए, तो आपको एक बात बहुत साफ तौर पर दिखाई देगी कि जो भी चीज हो रही है, की जा रही है कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो चीज हो जा रही है यानी कि जिसके परिणाम निकल रहे हैं, और वो परिणाम उसी तरह से निकल रहे हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं, तो वो तभी निकल रहे हैं जब उससे जुड़े हुए सारे काम एक व्यवस्था के तहत हो रहे हैं, यानी कि उसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, और जहां उन व्यवस्थाओं का अभाव है, उन प्रक्रियाओं में बाधा है, आप देखेंगे कि वहीं परिणाम के आने में भी बाधा हो जाएगी, या परिणाम आएंगे भी तो उस तरह के परिणाम नहीं आएंगे जिस तरह के परिणाम आने चाहिए थे। और मित्रों, इसे आप अपनी जिंदगी के रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में देखिए, बड़ी बड़ी चीजों पर मत जाइए, मैं बड़ी चीजों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत उन छोटी छोटी चीजों की बात कर रहा हूं, उन छोटी छोटी घटनाओं की बात कर रहा हूं जो अपने आप घटित हो रही हैं, या फिर हम उन्हें घटित होने दे रहे हैं, उसके लिए हम कारक हैं, हम घटित कर रहे हैं। तो आप पाएंगे कि इसके पीछे एक व्यवस्था काम कर रही है, एक प्रणाली काम कर रही है, और ये जो व्यवस्था होती है, ये जो प्रणाली होती है, इसी को जान लेना विज्ञान है, और उसे सुंदर बना देना कला है। इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहां भोजन बनाने को पाक कला कहा गया, तो क्या पाक विज्ञान नहीं है? मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं बना सकता, मैं उसके विज्ञान को जानता ही नहीं हूं कि अगर मुझे आलू और गोभी की सब्जी बनानी होगी तो कैसे, तो मैं पहले आलू को गर्म करूंगा, फिर गोभी को गर्म करूंगा, कितने कितने मसाले डालूंगा, और मसाले डालने के बाद कितनी देर तक उसे रहने दूंगा, उसमें आंच कितनी रहनी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, तो मुझे वो नहीं आता। और जो ज्ञान है वो विज्ञान है, यदि मुझे ये आ जाता तो मैं इसके विज्ञान को जानने वाला बन जाता। इसके बावजूद इसे पाक कला क्यों कहा गया है हमारे यहां? इसलिए कहा गया है कि जो विज्ञान होता है वो हर कोई एक जैसा करता है, लेकिन कला एक जैसी नहीं होती, हाथ के बदलते ही उसका स्वाद बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। चित्रकला, आप चित्र सीखते हैं, उसके नियमों और सिद्धांतों की पढ़ाई करते हैं, तो वो विज्ञान है, लेकिन जब आप चित्र बनाते हैं तब वो कला हो जाती है। एक ही स्कूल से पढ़े हुए 40 विद्यार्थी जब बाद में जाकर चित्रकार बनते हैं तो पता लगता है कि उन सभी चित्रकारों के चित्र अलग अलग हैं। तो सिद्धांत तो एक ही था, लेकिन जब वो ढलकर व्यवहार में आया तो अलग अलग हो गया, तो वो कला हो गई। और यही आलू गोभी की सब्जी के साथ होता है। घर में 10 लोग अगर आलू गोभी की सब्जी बनाए तो आप देखेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 10ों के द्वारा बनाई गई आलू सब्जी का स्वाद अलग अलग है, बावजूद इसके कि उनका सिद्धांत एक ही है। दोस्तों, ये क्या है? ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, बावजूद इसके कि ये रहस्य है। रहस्य तो वही है ना, जब हम जानते नहीं है, जान लेते हैं तो वह रहस्य नहीं होता है। अब जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को देखिए तो उन चीजों में आपको एक व्यवस्था दिखाई देगी। फ्रेंड्स, हम सांस ले रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें एक व्यवस्था है? और कितनी परफेक्ट व्यवस्था है। हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेकिन जब आप थोड़ी सी दौड़ लगाते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप उसी स्पीड से अभी भी सांस ले रहे हैं? जैसे ही आप थोड़ी सी दौड़ लगाते हैं, आपकी बॉडी ऑक्सीजन की ज्यादा मांग करने लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो चुकी है, तो आप उस मांग को पूरा करने के लिए तेजी से सांस लेना शुरू करते हैं। तेजी से लेते हैं और तेजी से छोड़ते हैं, जिसे सांस चलना कहते हैं, उसकी सांस तेज चल रही है। आप देख रहे हैं कि यह सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। अब आप थोड़ा सा इस विज्ञान को डिस्टर्ब कर दीजिए, इस प्रणाली की प्रक्रिया में थोड़ी सी बाधा डाल दीजिए। बाधा ये कि आपको बहुत तेज सांस लेने की जरूरत महसूस हो रही है, आपने 1000 मीटर की दौड़ लगाई है और अब दौड़ खत्म हो गई है, तो आप देखिए कि कभी तो वो जो ऑक्सीजन की जरूरत है उसकी मात्रा को पूरा करने के लिए नाक पर्याप्त नहीं होता, तो हम मुंह खोलकर मुंह और नाक दोनों से सांस लेने लगते हैं। उस समय आप मुंह को खुला मत रखिए और देखिए कि हालत क्या हो जाएगी। या आप उसी तरह से सांस लेने की कोशिश कीजिए जैसे कि हम सोते समय सांस लेते हैं, तब आप देखिए कि क्या हालत हो जाएगी। गड़बड़ी हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। यानी कि हुआ क्या, यहां हुआ कुल मिलाकर यह कि जो सांस लेने का जो विज्ञान था, सांस लेने का जो अनुशासन था, सांस लेने की जो व्यवस्था थी, सांस लेने की जो प्रणाली थी, उसमें हमने बाधा डाल दी। हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, आप देखिए कि भोजन करते करते कभी भोजन हमारी सांस की नली में फंस जाता है ना। हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, पानी पी करके उसे निकालने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि वो बेचैनी किस स्तर की होती है, लगता है कि सांस घुट जाएगी, अब जिंदगी खत्म हो गई। यानी कि जहां जो चीज जानी चाहिए उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज चली गई। चलिए, ये तो मैं भोजन की बात कर रहा हूं, भोजन का कोई दाना फंस गया होगा। आप पानी ही देख लीजिए, कभी कभी जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीते समय अगर हमने जरा भी असावधानी बरती तो वह हमारा पानी भी वो श्वास नलिका में चली जाती है, चला जाता है, और जाने के बाद वो कितना परेशान करता है, कितना परेशान करता है। तो जैसे ही गड़बड़ी होती है तो पानी पीने का हमारा जो एक काम है, जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है, वो बाधित हो जाती है। तो मित्रों, क्या आपको यहां नहीं लगता कि पानी पीने का भी एक अनुशासन है, सांस लेने का भी एक अनुशासन है, चित्र बनाने का भी एक अनुशासन है, और आलू गोभी की सब्जी बनाने का भी एक अनुशासन है? तो वहां जब हम इन सब अनुशासन को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर अनुशासन शब्द को व्यापक रूप में स्वीकार करने में दिक्कत क्या हो रही है? क्यों हमने इसके बारे में एक निगेटिव धारणा अपने दिमाग में बना रखी है? मित्रों, मेरी इस बात पर आप सब पूरी संवेदनशीलता के साथ गंभीरता पूर्वक विचार कीजिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसे, सच पूछे तो, बड़े मुद्दे पर बात कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि यदि हमने इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो हमारे जीवन की गुणवत्ता में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आ जाएगा। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है, मैं अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।